का है कि मन की तुलना की गई जंगली पशु से। अब दूसरा उदाहरण क्या है मन का, दूसरा है जिस प्रकार व्यभिचारण स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का वध कर देती है, उसी प्रकार यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे छूट प्रदान करता है तो वो एक प्रकार से काम क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है जो सचमुच ही योगी का सर्वनाश कर देंगे। इस उदाहरण में योगी के अनियंत्रित मन की तुलना व्यभिचारिणी स्त्री से की गई है। कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है तथा वह व्यक्ति अपनी पत्नी पर ना तो नियंत्रण ही रखता है और ना ही उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण ही देता है। ऐसी स्थिति में यदि वो स्त्री कुछ निठल्ले बदमाशों के चक्कर में आ जाए तो वह व्यभिचारिणी हो जाती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह स्त्री अपने निठल्ले बदमाशों के बहकावे में आकर अपने पति की ही हत्या कर देती है तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने पति की हत्या करके उन बदमाशों के साथ भाग जाती है। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि जिस प्रकार एक पति को अपने सुंदर पत्नी की सदा रक्षा करनी चाहिए तथा उसे अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण देना चाहिए, उसी प्रकार योगी को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अपने मन की रक्षा करनी चाहिए तथा कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? जिस प्रकार उचित रक्षा तथा प्रशिक्षण के बिना कोई स्त्री अन्य बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है, उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जाप न करने पर तथा कृष्ण कथा न सुनने से मन की स्त्री काम क्रोध लोभ आदि बदमाशों के संसर्ग में दूषित हो जाती है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति की शत्रु बन जाती है, उसी प्रकार काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं से मित्रता करने के कारण योगी का मन योगी का शत्रु बन जाता है। कितना अच्छा उदाहरण है कि मन जो है योगी का शत्रु बन जाता है ना, ये स्त्री के समान है जो निठल्ले बदमाश है उनके चक्कर में आके अपने पति की दुश्मन बन जाती है स्त्री, तो मन जो है ना दूषित हो जाता है काम क्रोध के चक्कर में तो अपना ही दुश्मन बन जाता है ना। इससे हमें पता चलता है कि मन कभी भी अपने आप शत्रु नहीं बनता, बल्कि जब मन काम रूपी शत्रु के संपर्क में आता है तब ये हमारा शत्रु बनता है ना। इसका अर्थ हुआ कि असली शत्रु तो काम ही है, असली शत्रु तो काम ही है, इसलिए भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में काम क्रोध को ही शत्रु बतलाया है। मन को तो भगवान ने कहा है कि शत्रु भी है मित्र भी है, लेकिन ये काम ये नित्य शत्रु है। ज्ञाने नु नित्य वैरिणा, ये नित्य शत्रु है, तो शत्रु ही हमेशा मन अगर इसके संपर्क में आया है तो मन भी शत्रु बन जाता है ना, तो मन तो शत्रु बन जाता है इसके संपर्क में आने से, है ना, नहीं तो मन शत्रु नहीं बनता अपना। शत्रु असली शत्रु तो यही काम है, इसलिए भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में काम क्रोध को ही शत्रु बताया है। इसके आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, अर्थात ये काम क्रोध ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा कि ये काम क्रोध आदि शत्रु हमारे मित्र बन जाएंगे। जबकि 6वें अध्याय में भगवान ने मन को शत्रु अवश्य कहा है, परंतु उन्होंने मन को नित्य शत्रु नहीं कहा। नित्य वैरिणा, जैसे काम को नित्य वैरिणा, तो मन को नित्य शत्रु नहीं कहा, भगवान ने कहा है कि मन आपका शत्रु भी है तथा मित्र भी है। आत्मे विहात्मनो बंधुर आत्मे विपुर आत्मना, तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम शत्रु के निवास स्थान इंद्रियां मन तथा बुद्धि है। इसका अर्थ हुआ कि जब काम शत्रु इंद्रियों मन तथा बुद्धि में निवास करता है तो उस समय हमारी इंद्रियां मन तथा बुद्धि हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो वास्तव में शत्रु जो है ना ये क्या काम, परंतु जिस समय हम अपने इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर अपना अधिकार करके काम शत्रु को भगा देते हैं तथा अपनी इंद्रियों मन तथा बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो यही इंद्रियां मन तथा बुद्धि हमारी मित्र बन जाती हैं। अतः यही बात निश्चित होती है कि असली शत्रु काम ही है। तो इस उदाहरण के अनुसार यदि स्त्री बदमाशों के संपर्क में आकर व्यभिचारिणी हो जाती है तो उस स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब तक मन काम क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में दूषित रहता है तब तक योगी को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जार पुरुषों के बहकावे में आकर व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की कभी कभी हत्या भी कर देती है, उसी प्रकार काम क्रोध आदि शत्रुओं के संपर्क में आकर योगी का मन योगी का ही सर्वनाश कर देता है। अथवा ऐसा भी होता है कि व्यभिचारिणी स्त्री उन बदमाशों को ही सुविधा प्रदान करती है कि वे घर में घुसकर उसके पति की हत्या कर देते हैं। उसी प्रकार ये दूषित मन ही काम क्रोध शत्रुओं को अवसर प्रदान करता है कि वे योगी का सर्वनाश कर देते हैं। तो मन ही अवसर देता है। जिस प्रकार से किसी व्यभिचारिणी स्त्री को कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार मन को भी कठोर आध्यात्मिक साधना में लगाकर पवित्र करना चाहिए। आगे इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, अर्थात जिन निमित्तों से हम युद्ध कर रहे हैं वे भी उल्टे ही हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे कई कारण होते हैं, परंतु फिर भी इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। आप समझे, कोई भी कार्य होता है तो उसके दो कारण हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। इस युद्ध के निमित्त कारण है आपसी कलह, राज सुख तथा भोगों की इच्छा आदि, ये निमित्त कारण। तथा इस युद्ध के उपादान कारण है दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाएं तथा हथियार आदि, उपादान कारण। तो यहां पर अर्जुन का कहना है कि इस युद्ध के जो निमित्त कारण है वे अच्छे नहीं है, क्योंकि हम राज और सुख के लोभ से ही युद्ध कर रहे हैं। परंतु जब हमें ये राज सुख भोग आदि प्राप्त होंगे तो उस समय हमें ये सभी वस्तुएं अपने संबंधियों के खून से सनी हुई दिखाई देंगी। चूंकि युद्ध का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्जुन ने यहां पर श्री कृष्ण को केशव शब्द से पुकारा है। क्या अर्जुन ने कहा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब अर्जुन ने जिन कारणों से श्री कृष्ण को केशव नाम से पुकारा है उन कारणों पर हम विचार करेंगे। बहुत अच्छा इसमें जो है केशव की व्याख्या है, छह प्रकार की व्याख्या है। अब देखिए, पहली केशव की व्याख्या, अर्जुन ने केशव क्यों कहा भगवान को। पहला कारण, वर्ष भर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से प्रत्येक महीने को भगवान के किसी विशिष्ट नाम से जोड़ा जाता है। जिस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तथा भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ वह अग्रहायण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। शुक्ल पक्ष, चूंकि अग्रहायण के महीने को केशव मास बोला जाता है, ठीक है ना, दामोदर मास, ये कार्तिक मास कहलाता है दामोदर मास, और कार्तिक के बाद अग्रहायण केशव मास कहलाता है, ठीक है ना। तो केशव मास बोला जाता है। अतः अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपके इस नाम के महीने में ऐसा भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। इसलिए अर्जुन ने कहा केशव कि ये आपके नाम का महीना है तो इसमें भयानक परिणाम वाला युद्ध क्यों हो रहा है। तो अर्जुन ने कहा है हे केशव। अच्छा, दूसरा केशव नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने केसी नामक असुर का वध किया। अर्जुन का भाव था कि हे केशव, आपने तो केसी नामक असुर का वध किया था, फिर मुझसे आप मेरे अपने ही परिवार का वध क्यों करा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन का ये मतलब है कि आपने तो केसी का वध किया है, फिर मुझसे आप ये सब काम क्यों करा रहे, ये परिवार का वध क्यों करा रहे हैं। तीसरा, केशव का अर्थ है वह पुरुष जिसके केश वक्र हैं, घुंघराले, अर्थात घुंघराले हैं। श्री कृष्ण के बाल घुंघराले, काले तथा अत्यंत चिकने हैं। इन बालों से घिरा हुआ श्री कृष्ण का मुख अत्यंत सुंदर लगता है, परंतु अर्जुन की शिकायत है कि हे केशव, जिस प्रकार आपके बाल घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार से आप मुझसे भी टेढ़ा कार्य करवा रहे हैं। ठीक है केशव। चौथा का अक्षर का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है शिव तथा वा अक्षर का अर्थ है बपू अर्थात शरीर। इस प्रकार का ईश और बपू से जो शब्द बनता है वह केशव है। इस प्रकार केशव का अर्थ हुआ वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा तथा शिव का निवास है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण की पूजा से ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, उनके अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव यदि आपकी इच्छा है कि युद्ध हो तो ब्रह्म और शिव जी भी इस युद्ध को रोक नहीं सकते। हा? क्या समझे अर्जुन ही कह रहे हैं केशव ब्रह्म और शिव भी नहीं रोक पाएंगे अगर आप युद्ध कराना चाहते हो तो। पांचवा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का एक ऐसा भी अर्थ बताया है जो केवल श्री कृष्ण के ही लिए लागू होता है। ये अर्थ श्री कृष्ण के किसी अन्य अवतार के लिए लागू नहीं होता। इसके पहले केशव शब्द के जितने अर्थ थे वे श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के लिए भी लागू होते थे, परंतु ये नवीन अर्थ केवल श्री कृष्ण के ही लिए है। चक्रवर्ती जी बतलाते हैं कि एक केशव का अर्थ है वह पुरुष जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करे। श्री कृष्ण के विषय में बतलाया जाता है कि वे श्री राधा रानी के केशों में पुष्पों की सजावट करते हैं। ये श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे केशव आश्चर्य है कि आप अत्यंत मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीला करने में भी निपुण है। केशव का ये मतलब। फिर छठवा केशव व्याख्या क्या है। श्री जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है जो समस्त अवतारों के कारण है। अतः अर्जुन का यहाँ पर भाव है कि हे केशव आपके समस्त अवतार पृथ्वी का भार उतारने असुरों का विनाश करने तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए होते हैं। संभवतः इस युद्ध के आयोजन में भी आपका यही उद्देश्य होगा। क्या पृथ्वी का भार उतारना है, असुरों का विनाश करना है, साधुओं की रक्षा करना है। तो जितने भी अवतार आपके हैं अगर इसीलिए होते हैं तो शायद इसमें भी यही आपका उद्देश्य हो सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण में निहित है। इससे यही बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण की उसी प्रकार से शरण ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। हरे कृष्णा। तो ये लेख पूरा हमने पढ़ा है। और अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जीवात्मा काम के संपर्क में कैसे आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले काम की परिभाषा बताएं। काम की परिभाषा क्या है? काम की परिभाषा कृष्णदास कविराज बताते हैं क्या है। निज इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम और काम जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की जो इच्छा है वो है प्रेम और अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा है काम, है ना। और फिर यही जो इंद्रिय तृप्ति का विस्तृत रूप क्या है? देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, मानवतावाद, है ना। ये सब जो है ना इंद्रिय तृप्ति का ही एक विस्तार है जिसमें लगता है कि भाई व्यक्ति तो बहुत बड़ा त्याग कर रहा है कि नहीं। जैसे महात्मा गांधी को कहा जाता भाई बहुत बड़े महात्मा है, उन्होंने तो बहुत त्याग का अपने सब इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके क्या उन्होंने भारत को आजादी दिलवाई। लेकिन इसमें भी क्या है? इंद्रिय तृप्ति ही है, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। क्या कि भाई हमारे भारतवासी इंद्रिय तृप्ति करें, आजाद भारत को आजाद कराने की जो इच्छा है वो क्या है कि भाई भारत आजाद हो जाए, मतलब भारत के वासी बिना किसी बाधा के इंद्रिय तृप्ति करें, खाएं, सोएं, भोग करें, सुरक्षा करें जी। तो इस प्रकार से काम जो है कई रूपों में होता है। जहां लगता है कि भाई बहुत महान है, बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन वो भी काम ही है। जब तक कृष्ण के चरणों में ये समर्पित ना हो है, कामम तो दासे न तो काम कामया। अमृत महाराज ने काम को लगाया भगवान की सेवा में, कैसा उनकी सेवा कृष्ण की दासता में अपने काम को लगाया ना। तो ये जो ना काम की परिभाषा है, तो यही काम जो है क्या है, प्रेम बन जाता है और प्रेम से काम बन जाता है, है? जो जीव के अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो यही भौतिक प्रकृति के संसर्ग में क्या दूषित हो जाता है और काम बन जाता है। और भौतिक प्रकृति के संसर्ग से जब अपने को व्यक्ति जो है दूर कर लेता है, तो फिर वही काम जो है फिर क्या बन जाता है, कृष्ण प्रेम बन जाता है, है ना। तो फिर काम जो है रजोगुण संबंध भाव, भगवान ने क्या कहा है, काम एस क्रोध एस रजोगुण संबंध भाव, रजोगुण से उत्पन्न होता है, है ना। तो जब जीव जो है गुणों का संग करता है, तो जिस गुण का संग करता है उस गुण से बंध जाता है, है कि नहीं। तो उस गुण के परिणाम फिर उसको भोगने पड़ते हैं। तो जब कोई जीव जो है ना रजोगुण का संग करता है, तो रजोगुण से उत्पन्न काम है, अब उसको जो है काम से बंधना पड़ता है, रजोगुण संबंध हुआ। और फिर से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो भगवान ने बताया कि इंद्रिया मन और बुद्धि ये काम के स्थान है, है ना। और सबसे पहले तस्मा तुम इंद्रिया दो नियम भरता रहो, सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो। पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस पापी को नष्ट करो, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है ना। इनका प्रश्न की जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं, तो भक्त को उनका उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो विवर्तितो तयोर नवसमांग अच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनो। राग और द्वेष है इंद्रियों में जो है, राग और द्वेष हमेशा रहता है इंद्रिय के विषयों के प्रति, राग और द्वेष है ना, इनके बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना परिपंथी है, मतलब रास्ते से भटकाने वाले हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको राग है क्या देखने में, बाहर जो है सिनेमा देखने में, तो ये आपकी इंद्रिय का जो है ना इस विषय में अनुराग है, राग है, है कि नहीं। तो इंद्रिय तो जो आपकी दृश्य इंद्रिय है उसमें राग है, सिनेमा देखना चाह रही है कि नहीं, या और भी कई तरह के नाटक है या जो है ना डांस वगैरह है वो देखना चाहती है, तो ये राग है, इसके बस में नहीं आना चाहिए, है ना। और फिर द्वेष क्या है, द्वेष साधु संत हैं भक्त हैं, है ना, तो उनको देखने में द्वेष होता है, मैं इनको नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे कि अष्टावक्र मुनि बहुत क्रूर थे, है ना, तो कोई गंधर्व था जो हंसा था, जो फिर उसको बनना पड़ा, क्या बनना पड़ा, अघासुर, अघासुर नाम का सर्प बनना पड़ा, है ना, तो उनको क्रूर देख करके हंसा, क्यों, द्वेष है, वो ऋषि बहुत क्रूर है, है ना। जैसे स्वर्ग की जो अप्सराएं वो हंसी अष्टावक्र मुनि को देख करके, तो उनको साथ मिला क्या, कि उनको असभ्य जो ग्वाले हैं वो अपहरण करेंगे उनका, तो ये द्वेष है, राग और द्वेष ना रहता है। उसी प्रकार कानों के लिए भी राग और द्वेष है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जी कीर्तन है तो कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है ना, इसके बस में नहीं आना चाहिए, आप करते रहो। राग और द्वेष है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है कीर्तन, कभी अच्छा लगता है, और कभी अच्छा भी नहीं लगता है, खराब भी नहीं लगता है, चलो ठीक है, और कभी खराब लगता है, द्वेष। तो मन की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, राग द्वेष बन रहे, लेकिन नहीं, इसके बस में नहीं आना चाहिए, आप नियम का पालन करो, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि यही आपकी रक्षा करेगा, तो आपको इसमें लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो राग द्वेष के बस में नहीं आना चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न, इनका प्रश्न है कि जीव आत्माएं वैकुंठ लोक से आती हैं, तो वहां तो गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, तो कैसे भोगने की इच्छा होती है। नहीं, जीव आत्मा में भोगने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जीवात्मा चूंकि तटस्था प्रकृति है भगवान की, तटस्था प्रकृति होने का मतलब यही है कि कभी जीव में इच्छा होती है भगवान से स्वतंत्र होने की है, तो तटस्था प्रकृति होने के कारण उसकी ये शुद्ध स्थिति ही है ऐसी तटस्था कि वो या तो भगवान के आश्रित होना चाहता है या भगवान से स्वतंत्र होना चाहता है या भगवान की तरह स्वतंत्र होना चाहता है, है? जैसे कि पुत्र जो है पिता की नकल करता है, पिता जो है सड़क पार करता है तो पुत्र भी सड़क पार करता है, लेकिन पुत्र जब सड़क पार करता है तो क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है नहीं? तो उसी प्रकार से जो है और तो उसी प्रकार से जीव जो है वैकुंठ में भी क्या है, भगवान की तरह स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसको फिर इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। अब प्रकृति के संसर्ग में आकर के अब जो है ना उसका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो काम में बदल जाता है। इनका प्रश्न कि स्वतंत्र होना भी तो काम है, स्वतंत्र ये जो है ना उसके अंदर जब इच्छा होती है स्वतंत्र होने की तो एक प्रकार की जो है ना ये है नकल करना है ना, तो ये तटस्था प्रकृति है, तटस्था प्रकृति में ये है ना, तो इच्छा तो जो है ना जीव को होगी, इच्छा के बिना जीवन नहीं है, है ना, तो वैकुंठ में इच्छा है, है? लेकिन जो इच्छा है तो या तो जो है ना कृष्ण की सेवा करने की इच्छा या फिर कृष्ण के समान स्वतंत्र होने की इच्छा, ठीक है ना, तो इच्छा तो हमेशा रहती है, लेकिन जो भगवान की आराधनी शक्ति है राधा रानी है इनमें कभी इच्छा नहीं होती भगवान से स्वतंत्र होने की, है ना। अंतरंगा प्रकृति जो राधा रानी है, भगवान राम के साथ सीता देवी हैं, तो ये कभी नहीं सोचती हैं भगवान से स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन जीव जो है तटस्था प्रकृति होने के कारण कभी विचार करता है। इनका प्रश्न है कि यहाँ पर अर्जुन को युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे, तो जो कौरव थे अर्जुन के भाई क्या उनको भी युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे? नहीं, अर्जुन को युद्ध में अमंगल नजर आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, हम ये जो है ना जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं सुख चाहते हैं उनको तो वे ही अगर अपने राज्य को सुख को प्राणों को त्याग करके युद्ध भूमि में खड़े तो हम युद्ध क्यों करें। अर्जुन का जो अमंगल था वो ऐसा उनको लग रहा है कि हम क्यों युद्ध कर रहे हैं, हम तो इनके ही लिए चाहते हैं सुख, कुछ अगर मिले तो इनको हम सौंपे, अर्जुन के अंदर ये इच्छा है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, अर्जुन के जो भाई थे धृतराष्ट्र के पुत्र, अब दूसरा प्रश्न है कि अर्जुन के जो पांडव भाई थे उनके अंदर कैसी भावना थी, वे युद्ध करना चाहते थे या नहीं? उस समय जब युद्ध शुरू हुआ उस समय तो अर्जुन को ही मोह हुआ, अर्जुन को ही मोह हुआ, और अर्जुन ने ही कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए भगवान कृष्ण से, तो बाकी युधिष्ठिर महाराज को जो है ना शोक हुआ युद्ध के बाद, युद्ध के बाद शोक हुआ, युद्ध के पहले शोक नहीं हुआ, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको काम तंग करता है कि स्त्री सहवास करना चाहिए, इन जो गृहस्थ हैं उनको भी काम तंग करता है। हाँ, कृष्ण भावनामृत के बिना जो है जीवन नरक के समान है, है ना, तो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो ये जो काम है ये तंग करता है। और भगवान ने क्या बताया, धूमे ना नहीं दुष्पूरे ना नल लेने चाह, है ना, दुष्पूर अग्नि के समान है। दुष्पूर अग्नि का मतलब है कि वो जितना उसमें घी डालो अग्नि में वो और मांगती है, और ज्यादा वो मांगती है ना, तो इसी प्रकार से काम की अग्नि जो है ना और बढ़ती जाती है, न जा तो काम कामानाम उपभोगे ने समेती, हमेशा कृष्ण बढ़ते हैं भूए एवं भी बढ़ते थे, तो कामनाओं के भोग से कभी भी काम शांत नहीं होता है, बल्कि अगर घी की आहुति डाली जाए तो अग्नि और बढ़ती है उसी प्रकार से। तो किसी भी हालत में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जब तक वो कृष्ण भावना भावित ना हो, है ना। तो मुख्य चीज यही है, गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। घर में रहो चाहे जंगल में रहो, मतलब चाहे गृहस्थ रहो चाहे ब्रह्मचारी रहो, सदा हरि का कीर्तन करो, है ना। इसी में सुरक्षा है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न कि सौभरी मुनि जो थे उनको काम ज्यादा तंग कर रहा था या मछलियों को ज्यादा तंग कर रहा था? हाँ, ब्रह्मचारी जीवन में अगर भजन में बहुत बाधा पड़ रही है ना, तो उसको गृहस्थ बन जाना चाहिए। मुख्य चीज यही है कि जिस किसी प्रकार से भी व्यक्ति को अपने अपना मन भजन में लगाना है ना, तो गृहस्थ जीवन में अगर उसको सुविधा मिल रही है भजन करने की तो गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी जीवन में सुविधा मिल रही है तो ब्रह्मचारी बने। मुख्य चीज यही है, अगर ब्रह्मचारी जीवन में अगर वो भजन कर सकता है भगवान का तो अच्छा है ना, लेकिन अगर भजन में बाधा पड़ रही है तो फिर वो गृहस्थ बने। लेकिन गृहस्थ में फिर और दूसरी प्रकार की चिंताएं पैदा होती हैं, दूसरी प्रकार की जो है तनाव पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन भी बहुत सफल होता है। बहुत से जो है ना वैष्णव आचार्य हैं हमारे, जो कि मतलब गृहस्थ जीवन में पूर्ण सफल थे, है ना। तो इसलिए मुख्य चीज तो भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा हो तो जो ना ब्रह्मचारी जीवन भी सफल है, गृहस्थ जीवन भी सफल है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए फिर कोई नजर नहीं पड़ता है, वो ब्रह्मचारी रहना चाहें तो ब्रह्मचारी रहें और गृहस्थ बनना चाहें तो गृहस्थ बने। वानप्रस्थ में किसी भी आश्रम में रह सकते हैं, उनके लिए कोई सब छूट है ना, उनके लिए कोई अंतर नहीं। तो तीनों गुणों से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो फिर उसके लिए जो है ना कोई बंधन नहीं होता है, किसी भी आश्रम में कोई बंधन नहीं उसके लिए। और कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि अगर दोनों भक्त हैं तो सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी में अंतर क्यों देखा गया है? जहां तक शुद्ध भक्तों की बात है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, कोई अंतर नहीं है। बारह महाजन, जो बारह महाजन बताए गए हैं इनमें हमने विचार किया था तो छह गृहस्थ और छह ब्रह्मचारी है ना। स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी है ना, कौन है? गृहस्थ ब्रह्मा जी, नारद ब्रह्मचारी हैं, शंभु गृहस्थ हैं, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार चार कुमार ब्रह्मचारी, कपिल ब्रह्मचारी है ना, कपिलो मनु और मनु गृहस्थ, प्रहलाद गृहस्थ, जनक गृहस्थ, प्रहलाद जनको भीष्म ब्रह्मचारी, बल्लिर बल्ली महाराज गृहस्थ, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी, और वयम यानी यमराज गृहस्थ है ना। तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी भी, कोई अंतर नहीं। बारह महाभागवत है ना। और कोई प्रश्न? सुखदेव गोस्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। सुखदेव गोस्वामी को अगर पुत्र हुआ या उनकी शादी हुई है तो कहीं पर बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी ने अपनी छाया छोड़ दी थी व्यास जी के पास, तो छाया सुख था वो। जो भी हो, सुखदेव गोस्वामी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो श्रीमद भागवत सुना रहे हैं, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि जब रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है तो रजोगुण से कैसे बचे? ये तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण जो है, जो जीव है ये तीनों गुणों से बंधा होता है। और भगवान के रजस तमस चा विभू सत्वम भवती भारत है, रजा सत्वम तमस चा तमस सत्वम रजस था। तो कोई एक जो गुण है दो गुणों को दबा देता है, लेकिन जो जीव है ये तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है ना। लेकिन कभी रजोगुण है वो तमोगुण और सत्वगुण को दबा देता है, कभी सत्वगुण है तमोगुण रजोगुण को दबा देता है, कभी तमोगुण है वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है। इन तीनों गुण है इसमें। लेकिन फिर रजोगुण से कैसे ऊपर उठे हैं? तो भागवतों में लिखा हुआ है, नित्यम भागवत थे भैया नष्ट प्राय सुभद्रेश, नित्यम भागवत थे भैया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तो उत्तम श्लोक भगवान में नृसिंह की भक्ति होती। तदा रजस्तमो भाव काम लोभा देयस्ये चेत एतेर नाविद्धम इष्टम सत्वे प्रसिद्धि। तो उस समय रजोगुण तमोगुण के जो भाव है तो उनसे चित्त आविद्ध नहीं होता है और सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो नित्यम भागवत तो मतलब भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति होगी। तो भजन क्रिया में कठोरता से नियमों का पालन करना, श्रवण कीर्तन में लगे रहना, ठीक है। और कोई प्रश्न? अच्छा मैं प्रश्न कर रहा हूँ। इसमें अर्जुन कह रहे हैं निमित्तानि जपस्यामि विपरीतानि केशव, कि जो निमित्त हैं इनको मैं विपरीत देख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? अर्जुन कह रहे हैं कि जो निमित्त कारण है इनको मैं विपरीत देख रहा हूँ। तो किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण क्या है? राज सुख भोगने की इच्छा, ये निमित्त कारण है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि निमित्त कारणों को मैं विपरीत देखता हूँ, कि जो युद्ध हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम राज सुख के लोभ से युद्ध कर रहे हैं, तो निमित्त कारण विपरीत है हमारा, ये ठीक नहीं है, है ना। जबकि ये नहीं है निमित्त। भगवान ने भगवत गीता में फिर बताया अर्जुन को कि निमित्त कारण श्री कृष्ण का आदेश है, करिष्ये वचनम तव। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जय।